ലൈവ്യം ആത്മകമാ പാർത്ഥ നൈതദ്വൈയുപപദ്യതി ശൂദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം യക്തോ തിഷ്ഠ പരന്തപ പുത്ര इस दीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रभुपाद महाराज तात्पर्य बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए अर्जुन में। अर्जुन की जो स्थिति हुई है, हमने देखा कि अर्जुन के माध्यम से हमारे स्थिति का ही वर्णन हो रहा है पहले ही दिन से। किस प्रकार से ये सारी सिचुएशन, ये सारी परिस्थिति हमारे लिए है। सब शब्द जो बोले जा रहे हैं वास्तव में हमारे लिए बोले जा रहे हैं। अर्जुन के हम बहुत बहुत ऋणी है, क्योंकि उनके कारण ही हमारे लिए इतने सारे शब्द बोले गए भगवान के द्वारा। तो भगवान जो पिछले श्लोक में हम कह रहे थे कि भगवान जो बात कर रहे हैं तुरंत अर्जुन के सारे आर्गुमेंट्स को, सारे तर्क को उन्होंने खारिज कर दिया। तो यहां क्या कह रहे हैं, क्लैव्यम आत्म गमह पार्थ नैतत्वम यु प्रपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। अब आप ये समझ सकते हैं हम यहां पे क्लैव्यम का अर्थ क्या है। नपुंसकता, भगवान कृष्ण ऐसे क्यों बोल रहे अर्जुन को, इतना भयंकर ऐसे क्यों बोल रहे, इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान हृदय से अधर्म का नाश करना चाहते हैं, अधर्मी का नाश करना चाहते हैं। जो अधर्म है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उसको भगवान नष्ट करना चाहते हैं। और यदि कोई उस प्रवृत्ति के लिए अच्छी बातें कहता है, अर्जुन उस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति या अधर्म की प्रवृत्ति को अपने अंदर के भावों से, मोह से और प्रोत्साहित कर रहे हैं अर्जुन। इसलिए भगवान थोड़े से अंदर से उनको कहते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया है, हमने पिछले समय देखा। तो युद्ध हो रहा है, भगवान देखो कितने दयालु है, कितने दयालु है, चाहे तो वो तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल के सारे अधर्म को खत्म कर सकते हैं, पर वो हमेशा हमेशा हमको चांस देते हैं। ठीक है, एक बार गलती किया है कोई बात नहीं है, माफ कर देते हैं, क्षमा क्षमा दया शांति, ये भक्तों की प्रवृत्ति। कहते कि क्षमा दया शांति जहां जहां है वहां सारे देवी देवता रहते हैं। तो भगवान के अंदर ये जो गुण है क्षमा, बहुत क्षमाशील है। भगवान राम पूरी वानर सेना को लेके गए थे नहीं, रावण के साथ युद्ध करने के लिए। अभी तो ऐसी सेनाएं होती है, उनको फुल ट्रेनिंग दिया जाता है, लेफ्ट राइट सब पूरी तरह से उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, कब शस्त्र चलाना है, कब सैल्यूट लगाना है, कब किसको प्रताड़ित करना है, कब किसको मारना है, कैसे शिक्षा देना है, कब सुना, इस प्रकार से एकदम डिसिप्लिन। कोई भी सेना हो उसको एकदम सब कुछ इतना शिस्त के साथ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और भगवान राम के साथ किसकी सेना थी, वानर सेना थी। वानर सेना को कोई सिखा सकता है युद्ध कैसे किया जाए, कैसा मिसाइल छोड़ा जाए, कैसा बाण छोड़ा जाए, वानरों को कोई सिखा सकता है? वानर तो जानते ही नहीं शस्त्र चलाना, उनके पास तो शस्त्र भी नहीं है, वो तो केवल पत्थर फेंकते थे राक्षसों के ऊपर, राक्षसों को पत्थरों से मारते थे। भगवान राम की सेना ऐसी, तो ऐसे सेना के साथ भगवान राम गए, समुद्र किनारे खड़े हुए, युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध के समय विभीषण, जब सभी ने देखा कि विभीषण आ रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, भगवान के पक्ष में जो थे, भगवान राम के पक्ष में बड़े बड़े मुत्सद्दी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, शूरवीर थे, सुग्रीव वगैरह, सब लोग जब देख रहे थे विभीषण आ रहे हैं, तो लक्ष्मण वगैरह सब कहने लगे कि इसको पकड़ो, ये आ रहा है शत्रु पक्ष का, रावण का भाई है, केवल असुर ही नहीं है, ये तो रावण का भाई है और हमारी ओर आ रहा है, हमारी दिशा में आ रहा है, तुरंत इसको वहीं पे बंदी बना ले तो अच्छा है, इसको पकड़ लो। तुरंत पकड़ने के लिए वहां पे सब तैयार हो गए, लेकिन भगवान राम कहे रुको, ऐसा मत करो। तो भगवान राम क्या कहते हैं, अरे ये तो विभीषण है, रावण का भाई है, और वो तो शरण आया, उसके हाथ में ना शस्त्र है ना अस्त्र है, वो प्रणाम कर रहा है, और वो तो शरण आया है, समर्पण, हमको वो शरण आ रहा है, समर्पण समर्पित हो रहा है हमारे ओर। यदि रावण भी आ जाए इसकी जगह और शरण हो जाए, समर्पित भाव से रावण भी आ जाए, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूं, ये तो उसका भाई है। बताइए, भगवान की पत्नी को जिसने किडनैप किया, सीता माता को जिसने किडनैप किया, पकड़ के रखा, उसको, उसके लिए भगवान कह रहे कि यदि साक्षात रावण भी आ जाए विभीषण की जगह और वो क्षमा मांगे, आश्रय मांगे, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा, ये तो विभीषण है। इसी प्रकार से यहाँ इतनी भयंकर युद्ध हो रहा है और भगवान का उद्देश्य क्या है कि अधर्म को नष्ट करना, लेकिन कैसे, पहले शांति से भगवान अधर्म को नष्ट कर। भगवान भागवतम में कहते हैं इसलिए धर्म जो है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के प्रणेते कौन है, हा? भगवान है। कोई भी 4-6 लोग या एक बड़ा तबका खड़ा हो गया, 50-200 लोग, और कहने लगे अब हमने नया धर्म स्थापन किया, उसको धर्म कहते हैं क्या? वो धर्म नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा जो धर्म की स्थापना हुई है वही वास्तव में असलियत में वही धर्म है। दूसरी सब धोखाधड़ी है, सब स्वार्थ है, दूसरा अनर्थ है। तो हम यह देखते संसार में इस कार्य के लिए भगवान अधर्म को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से भगवान आगे आए, अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे, अर्जुन को उपदेश दे रहे, ज्ञान दे रहे, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, साधु संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान अधर्म का नाश करते हैं, साधु संत भगवान के भक्त गुरुजन ये क्या करते हैं? ये अनर्थ का नाश करते हैं। हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जीवों के अंदर जो अनर्थ है, अधर्म है, उसको नाश करने के प्रयास ये साधुगण संतगण गुरुजन करते रहते। तो ये भगवान की सेवा ही करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि संसार में कहा जाता है सारे संसार में यदि युद्ध हो रहा है तो वो किस लिए, क्यों हो रहा है? धर्म की वजह से। हमने तो ऐसा ही सुना है जो तथाकथित अधर्मी लोग है या सेक्युलरिज्म, सेक्युलर जो लोग है, वो ये कहते हैं कि सारे संसार में युद्ध इसलिए हो रहा है क्यों, कि लोग धर्म को मानते। लेकिन सारे संसार के सारे धर्मों के प्रणेते उन्होंने क्या कहा, यदि हम ये सोचे तो हमको समझ में आएगा कि वास्तविक धर्म क्या है। यीशु ख्रिस्त एक बार कहते हैं आई केम नॉट टू सेंड पीस बट सॉल्ट, मतलब मैं इस संसार में शांति को भंग करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि अशांति को खत्म करने के लिए आया हूं। वो भी खत्म करने की बात करते हैं जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त। क्या खत्म करने की बात करते हैं? खत्म करते हैं क्या? द्वेष, द्वेष को खत्म करना चाहते हैं। यीशु ख्रिस्त, क्रिश्चियन धर्म भी यही कहता है। बाद में बुद्ध, भगवान बुद्ध क्या करते हैं, क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं उठो जागो। कितने दिनों तक, कितने युगों तक सोते रहेंगे? उठो जागो और युद्ध करो। इसके साथ हमको कह रहे हो, अर्जुन को नहीं कह रहे। भगवान बुद्ध सारे जीवों को कह रहे कि उठो जागो युद्ध करो। किसके साथ युद्ध करो? बुराइयों के साथ युद्ध करो, अधर्म के साथ युद्ध करो। जागो, सो मत, अधर्म हो रहा है, बुराइयां चल रही है, आप सोते मत रहो, चलने दो, हमको क्या है। भगवान बुद्ध बुद्धिज्म कहता है, धरतुष्ट धरस्ट्रियन वो क्या कहते हैं, फाइट फॉर गॉड एंड राइट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। भगवान के लिए युद्ध करो, मतलब भगवान के उपदेश जो है उनका पालन करने के लिए युद्ध करने की जरूरत पड़ी तो युद्ध करो, लेकिन किसके साथ युद्ध करो? अगेंस्ट डार्कनेस, अज्ञानता के साथ। संसार में अज्ञानता भरी पड़ी है, इस अज्ञानता के साथ युद्ध करो। फिर मोहम्मद पैगंबर कहते हैं यू शैल फाइट विथ इन फाइट, मतलब जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, जो भगवान के उपदेशों को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर के ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं, उनके साथ तुम युद्ध करो, नास्तिक लोगों के साथ युद्ध करो। और वो युद्ध करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आप उस उपदेशों का पालन करोगे तो क्या होगा, आपको उसका फल मिलेगा, और यदि पालन नहीं करोगे तो आपको उसका दंड मिलेगा। देखिए क्या कहते, मतलब सारे धर्म जो है वो सारे धर्म कहते हैं कि अज्ञानता, दुष्टता, बुराइयां इन सब के साथ युद्ध करो। लेकिन तथाकथित अधर्मी लोग क्या कहते हैं कि जितने सारे युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध धर्म के कारण हो रहे हैं, है ना? गम्मत की बात है, मजाक है। सेक्युलरिज्म कहता है कि ये धर्म के कारण युद्ध हो रहे हैं। ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अभी तक जितने युद्ध हुए हैं, महायुद्ध या कोई भी युद्ध दो देशों में या पूरे संसार में या पूरे वर्ल्ड में, सारे दुनिया में, कौन सा युद्ध धर्म की वजह से हुआ कोई बता सकता है? वर्ल्ड वार पहला महायुद्ध धर्म की वजह से हुआ? नहीं हुआ। दूसरा महायुद्ध धर्म की वजह से हुआ? वियतनाम वॉर धर्म की वजह से हुआ? नहीं हुआ। गल्फ वॉर तेल की वजह से हुआ? धर्म की वजह से नहीं हुआ। तो कैसे कहा जा सकता है कि धर्म की वजह से युद्ध हो रहा है? कोई भी अभी तक इंडिया पाकिस्तान वॉर धर्म की वजह से नहीं हुआ, लैंड की वजह से हुआ। जमीन हमारी है, बोले हमारी। कोई भी बड़े युद्ध हुए हैं, कोई भी युद्ध धर्म की वजह से नहीं हुआ है। किस लिए हुआ है? तो हम ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि इतना ज्यादा आतंकवाद, टेररिज्म, ये सब आतंकवाद धर्म की वजह से है। पर आतंकवाद धर्म की वजह से नहीं है। जो आतंकवादी है वो आतंकवादियों को वो कार्य करने के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को धन दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप बड़े आराम से रहोगे, आपको राज दरबार दिया जाएगा, महल दिया जाएगा, पैलेस दिया जाएगा, बिल्डिंग दिया जाएगा, प्रॉपर्टी दिया जाएगा। आपको एक बॉम्ब रखना है, बॉम्ब रख दो, आपकी 7 पीढ़ियों को चलेगा, इतना धन हम दे देंगे, और रख देते। तो ये युद्ध धर्म के लिए हो रहा है या धन के लिए हो रहा है? जो टेररिज्म है, ये जो आतंकवाद है, ये कोई धर्म के ऊपर चलने वाले लोग नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक लोग है। भौतिक एंजॉयमेंट, भौतिक सुख के लिए, मरने मारने के लिए जो लोग है वो ये आतंकवादी लोग, ये धर्म के लिए नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि संसारिक सुख के लिए जो हत्या करता है, आतंकवाद फैलाता है, वो तो टेररिस्ट तो है ही है, परंतु जो लोग बिना खून खराबा किए हुए धन के लिए लोगों को चीट करते हैं, उनमें और आतंकवादियों में क्या फर्क है? तो वो भी तो अधर्मी, वो भी तो राक्षस हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कोई रिलीजन धर्म के ऊपर धर्मांध होके यदि किसी को मारता है, काटता है और कहता है कि धर्म ये कहता है कि इनोसेंट लोगों को मारो काटो, तो वो धर्म नहीं। मोहम्मद पैगंबर क्या कहते हैं, या बुद्ध क्या कहते हैं, या कृष्ण भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ज़रथुस्त्र क्या कह रहे हैं, किसी भी धर्म प्रणेता को देखो तो बोले बुराइयों को खत्म करो, अच्छे लोगों को मारो, ऐसा किसी ने नहीं बताया। तो इस प्रकार से है, तो जब तक हम अंदर रियल स्पिरिचुअलिज्म, जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते, तब तक युद्ध रुकेगा नहीं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि संसार मुझे जो सुख चाहिए, मुझे जो भोगने का वस्तु चाहिए, विषय चाहिए, सुख चाहिए, वो संसार में, बाहरी दुनिया में। तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, सबको चाहिए, और वो सब क्या सोच रहे हैं, ये बाहर है, वस्तुओं में है। मुझे जो सुख चाहिए वो डेड वस्तुओं में, जो निर्जीव है, उन वस्तुओं में मेरा सुख है, और वो है लिमिटेड। तो लिमिटेड है, सबको चाहिए, तो मरो, मारो एक दूसरे को। संसार में यही हो रहा है, इसी को कहते हैं डेडली कॉम्पिटिशन, भयंकर प्रतिस्पर्धा। एक समय ऐसा आएगा 10वीं में पास होने के लिए जिसको 100 में से 100 मार्क मिलेंगे वो पास, जिसको 99.5 मिलेगा वो फेल। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, स्पर्धा। सबको वस्तु चाहिए, वस्तुओं को एकत्रित करना है, सभी को करना है। तो ये वस्तुवाद जो हो गया है, भौतिकवाद, ये भौतिकवाद के कारण युद्ध होते जा रहे, धर्म के कारण। धर्म कहता है कि तुम्हारे, तुमको जो शांति चाहिए, सुख चाहिए, तुम्हारे अंदर है, अपने हृदय में है, हमारे अंदर है। पर ये एकदम ऐसी बात लगती है, हमारे अंदर कैसा सुख शांति हो। हम तो बचपन से ये बात सुनते आ रहे, कभी तो हमको दिखी नहीं हमारे अंदर शांति। कभी किसी ने दर्शन किया अपने अंदर के शांति और सुख का? किसी ने नहीं किया। सुनते तो बचपन से आ रहे कि सब अंदर है, अंदर कहां है। तो इस प्रकार से शांति जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आते, तब तक हम आत्म संतुष्ट नहीं हो सकते, तब तक हमको सेटिस्फाई नाम की चाबी नहीं मिलेगी, समाधान संतोष नाम की चीज हमको नहीं मिल सकती है। हमको वस्तुएं एकत्रित करने की आदत हो चुकी है, यदि वस्तु हमारे पास आ भी गई तो भी हमको शांति नहीं, धनी होके भी हम निर्धन होते रहेंगे, है ना। बहुत सब कुछ एकत्रित किया लेकिन फिर चाहिए। इसके पहले हम चर्चा किए थे, गाड़ी है तो मोटर कार चाहिए, एक मोटर कार है तो दो चाहिए, दो है तो अब मर्सिडीज ऑडीज वगैरह ये सब चाहिए, वो सब है तो अभी हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर है तो अभी चार्टर्ड प्लेन चाहिए। ये तो मतलब नित्य जो है ये व्यक्ति कैसा है, धनी होकर भी निर्धन है, गरीब है, नहीं है, ये चाहिए 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 चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी धर्म हमको ये सिखाता है कि बाहरी दुनिया में जब तक शांति और सुख ढूंढोगे तब तक अशांत रहोगे। इसलिए अपने आप से पहले अंदर देखना चाहिए, अपने हृदय में देखना चाहिए, लोगों से, मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, वस्तुओं से कम प्रेम करना चाहिए। इसके पहले उदाहरण दिए थे हम, आजकल कैसे संसार में हो रही है बातें, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का उपयोग किया जाता है, बल्कि होना क्या चाहिए, मनुष्य के ऊपर प्रेम करने के लिए वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। लेकिन होता एग्जैक्टली उल्टा है, वस्तुओं के प्रति इतना प्रेम है कि उनको प्राप्त करने के लिए हम कोई भी मनुष्य को यूज करके थ्रो कर देते हैं, यूज एंड थ्रो। नहीं तो यहां धर्म का उपदेश, मतलब पहले इंसान बनिए, सुख शांति अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि हमारे अंदर है। जब भगवान का, ईश्वर का अंश हमारे हृदय में है तो सब कुछ हृदय में है, पर वो हम ढूंढने के लिए फेल होते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि क्लैपेम मास्म गमा पार्थ, तो अर्जुन जब शांति का प्रस्ताव लेके गए भगवान कृष्ण कौरव के पास, वो भी देखिए युद्ध नहीं चाहते, पहले शांति का प्रयास कर रहे, कितने दयालु है, इतना सारा पाप किया इन लोगों ने, कौरवों ने कितना प्रताड़ित किया उनको, इतने अनेकों वर्ष तक जंगल में वनवास हुआ, फिर अज्ञातवास हुआ, फिर भी भगवान बोलते ठीक है ना, जाने दो, माफ कर दो उनको, माफ कर दो, क्षमा कर दो उनको, मैं जाता हूं उनको कन्विंस करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आप युद्ध मत करो, इन पांडवों को 5 गांव दे दो, हो गया बस, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा दुर्योधन कहता है पकड़ो इसको, कृष्ण को पकड़ो, अरेस्ट करो उसको, कह रहे भगवान दया दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान का शांति प्रस्ताव ठुकराया गया। जब उस समय भगवान वहां पे गए तो माता कुंती, उन्होंने ये सब कुछ सुन रखा था कि कैसे उनके पुत्रों को प्रताड़ित किया गया। माता कुंती भगवान को कहती है कि हे कृष्ण, तुम अर्जुन और भीम को कहना मेरा ये संदेश, अर्जुन और भीम को मेरा ये संदेश कहना कि क्षत्राणियां इसी समय के लिए अपने बच्चों को जन्म देते हैं। कौन से समय के लिए? जब युद्ध आता है तो युद्ध के समय डगमगाना नहीं है, युद्ध करना है, शत्रुओं का नाश करके वापिस आना है, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म असफल हो जाएगा। तुम यदि बीच में युद्ध छोड़ के वापिस आ जाओगे, उनको कहो कृष्ण यदि बीच में युद्ध छोड़ के वापिस वो आ गए तो मैं उनका मुख तक नहीं देखूंगी। ये संदेश महारानी कुंती भगवान के पास अर्जुन की दे देती, कहो उसको युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगी। अर्जुन को और भीम के लिए मैसेज है। जब भगवान शांति प्रस्ताव लेने के लिए गए थे तब उन्होंने अपना मैसेज दे दिया, जब शांति तो नहीं होगी युद्ध ही होगा, और युद्ध होगा तो अर्जुन को मेरा यह संदेश जरूर समझा। फिर वो और आगे कहती है कि उनको कहना कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, अर्जुन को कहना कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने गर्जना किया, कहा, बताया कि हे ये जो तुम्हारा पुत्र है महापराक्रमी रहेगा, भयंकर पराक्रमी रहेगा, इसके सामने कोई शत्रु नहीं टिक पाएगा, सारे शत्रुओं का नाश करेगा ये, इसकी केवल पृथ्वी लोक पे नहीं स्वर्ग में भी प्रशंसा होगी, इसका जीवन सफल होगा, कौरवों का ये नाश करेगा, धर्म की ये स्थापना करेगा, भगवान कृष्ण का उपदेश तुम्हारा उपदेश प्राप्त भगवान कृष्ण का उपदेश प्राप्त करेगा। ये सब आकाशवाणी हुई थी उस समय जब जन्म हुआ तुम्हारा, ये कहो अर्जुन को। इसलिए इस श्लोक में यदि आप देखें, क्लैव्यम आत्मगम पार्थ, पार्थ इस नाम का शब्द प्रयोग किया गया। हमने पहले बताया था पहले अध्याय में, पार्थ इस शब्द को इस पूरे भगवत गीता में 38 बार भगवान ने उच्चारण किया है, पार्थ 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 पार्थ। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते कि तुम मेरे कितने क्लोज हो, कितने करीब हो, क्योंकि पार्थ मतलब पृथा पुत्र। पृथा कौन है? कुंती महारानी। तो पार्थ बोलने का उद्देश्य है भगवान का यहां पे कि हे पार्थ मतलब समझो, अर्जुन को उनके माता का याद दिलाते हैं भगवान कृष्ण, उनके माता जी की याद दिलाते हैं, याद करो अपने माता का संदेश। क्या कहा था उन्होंने? युद्ध करो, युद्ध के बीच में वापिस मत आओ, यदि आओगे तो तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी, युद्ध करो। ये भगवान इसलिए यहां पृथा कहते, पार्थ कहते, कि तुम्हारे माता का वो संदेश याद करो, कुछ नहीं तो कम से कम अपने माता का तो आदेश पालन करो, युद्ध करो। तो इस प्रकार से आगे क्लैव्यम मात्म गमह पार्थ। कुंती रानी कहती थी उस समय भगवान कृष्ण को कही कि सन्यास तुम्हारे लिए नहीं है, न तुम्हारे लिए सन्यास है और व्यापार भी तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि व्यापार में बहुत बड़ी सहनशीलता चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय व्यापार करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, इसलिए तुम क्या करो, युद्ध के सिवा तुम्हारे पास कोई पर्याय नहीं। और भगवान इसलिए उनको कहते हैं कि पार्थ समझो, अर्जुन समझो, अपनी माता का आदेश का पालन करो। लेकिन यह समझाते वक्त भगवान कहते क्लैव्यम, अरे एक कायरता कहां से आ गई, कायर कैसे हो गई नपुंसक, कहां गया? तो भगवान कृष्ण का उद्देश्य जो है अर्जुन को इस प्रकार से बताने के लिए ये नहीं है कि अर्जुन को जबरदस्ती प्रताड़ित करे, लेकिन भगवान को याद दिलाना चाहते कि उनकी कितनी शक्ति है, उनके पास कितना आत्मविश्वास है अर्जुन के पास। साधारणतः सभी के पास आत्मविश्वास आत्मशक्ति होती है, नहीं, सभी के पास आत्मशक्ति है, परंतु क्या हो गया उसको, भूलने की भी तो आदत है ना, नहीं, कल सुबह क्या खाया था, बट जैसे बोली एक सेकंड में, भूलने की आदत है। आत्मशक्ति सबके पास है, आत्मविश्वास है, इंटरनल पोटेंसी है, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे पास आत्मशक्ति है, याद दिलाने वाले चाहिए कि हमारे पास आत्मशक्ति है, इसलिए सत्संग में आना पड़ता है। वो बार बार बताते हैं कि आपके पास आत्मशक्ति है, हम सुन के कंटाल जाते हैं कि कितनी बार वही बात प्रभु जी, लेकिन क्या करें, शास्त्र यही कहता कि आत्मशक्ति, सुनो समझो, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, इस बात को शास्त्र इसीलिए बार 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 बताते हैं, हमारे शक्ति का हमको याद दिलाते हैं, इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि क्यों आ गई है क्लैव्यम नपुंसकता, कायरता तुम्हारे अंदर क्यों आ गई है, क्योंकि आगे का आगे के इसमें कहा है कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो कायरता इसलिए आ गई है नपुंसकता, कि हृदय दुर्बल हो गया, नहीं? हृदय दुर्बल होने से व्यक्ति में कायरता आती है, भय आता है, नपुंसकता आती है। हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम, हृदय दौर्बल्यम। अब क्षुद्र यहाँ क्यों कहा गया है? क्षुद्र इसलिए कहा गया है, पहली बात तो यह है कि ये जो दुर्बलता है ये तुच्छ बात है, क्षुद्र बात है, तुच्छ चीज है। हृदय को दुर्बल बनाना तुच्छ बात है, निकृष्ट बात है। और दूसरा बात है कि यह हृदय की दुर्बलता, मतलब यह तुच्छता तुम्हारे अंदर कैसे आ गई है? एक तो यह तुच्छ बात है और अभी तुम्हारे अंदर यह तुच्छता आ गई, मतलब तुम तुच्छ हो गए, शुद्ध हो गए। और कारण है हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्य का अर्थ क्या है? हृदय दुर्बल क्यों हो जाता है? देखिए, शरीर में कभी कुछ रोग हो जाता है तो हम काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं? शरीर रोगी होता है तो व्यक्ति उठ के भी नहीं बैठ सकता है। शरीर में रोग हो गया है, कैसे उठेगा? उठ ही नहीं सकता। अर्जुन की यही दशा हुई, हमने पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में देखा। अर्जुन कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, धनुष गिर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंखों में अश्रु, अश्रुपूर्ण कलेक्शन, अश्रु आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस, विश्वास खत्म हो गया है, मतलब इस प्रकार से शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन शरीर कब काम नहीं करता है? जब कुछ शारीरिक रोग व्याधि हो जाती है तो शरीर काम नहीं करता। परंतु अर्जुन को तो कोई शारीरिक रोग नहीं था, कोई बीमारी, पेट दर्द, बदन दर्द वगैरह, सर दर्द कुछ नहीं। उधर राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो पेट दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, शीतल पेन भाव तो इस प्रकार से उनको कोई दर्द था, कोई दवाई की बाम की आवश्यकता थी अर्जुन को, शरीर दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर क्यों दुर्बल हो गया? बैठ गया, बोल रहा है मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। तो ये इसी यहां कहा गया कि हृदय दौर्बल्यम, शरीर का रोग और हृदय का रोग, दो रोग है। एक तो शारीरिक रोग है जो कि हम तो वायरस होता है तो कोई भी एंटीबायोटिक्स खा के दूर कर देते हैं, ये क्रोसिन, टेरामाइसिन, एनिसिन, मेनिसिन, अनेक प्रकार के सिंस को खा के हम सिन को दूर करने का प्रयास, रोगों को दूर करने का प्रयास करते हैं। पर जब हृदय का रोग होता है तो पहली बात है वो क्यों होता है, कौन सा वायरस है? शरीर के तो रोग के तो अनेक वायरस है, उसके इलाज भी है, उपाय भी है। तो हृदय का रोग होता है तो पहले तो वायरस कौन से है और उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, कौन डॉक्टर है? नहीं तो हृदय के रोगों के 6 वायरस है, बड़े भयंकर वायरस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हृदय के रोग के महाभयंकर वायरस है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, भयंकर फ्लू है ये। कोई काम रोगी होता है, कोई क्रोध लोभी, क्रोधी, क्रोध का रोगी होता है, कोई लोभ का रोगी होता है, भयानक रोगी है ये कोई मोह के रोगी होते हैं तो कोई मत्सर के रोगी होते हैं, इतने भयानक रोगी होते हैं। और ये वायरस पता नहीं कितनी बार कितना भयंकर खर्च कर चुका हुआ होता है हृदय में, वो दुरुस्त ही नहीं होता है। तो ये हृदय रोग और शारीरिक रोग, ये दोनों रोगों को जो दुरुस्त करेगा वो वास्तव में निरोगी है। हम चाहते हैं ना हमेशा शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, है ना, ये हम चाहते हैं। तो शरीर मजबूत रहा, हृदय कमजोर रहा तो फायदा क्या है? निरोगी है, कभी भी हृदय धोखा दे सकता है, हार्ट अटैक कभी भी आक्रमण हो सकता है इन रोगों का, भयानक, और वो हार्ट भी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सर के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर अटैक नहीं करते, डायरेक्ट हार्ट के ऊपर, कोई चांस ही नहीं मिलता है कोई समय नहीं मिलता है रिपेयर के लिए, इतना भयंकर अटैक करते हैं। तो अर्जुन को कौन सा रोग, अर्जुन के हृदय में कौन सा वायरस घुस गया था इस 6 में से? बताइए। हाँ, मोह, मोह का वायरस घुस गया, हृदय दुर्बल हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, बड़ा भयंकर डिजीज है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश रूपी औषधि के द्वारा अर्जुन का ये रोग ठीक कर दिया, है ना। अर्जुन को भगवान पूछते हैं अंत में, अर्जुन क्या बात है, कैसे लग रहा है, ठीक हो गया, दवाई से कुछ फर्क पड़ा। डॉक्टर पूछते हैं ना, आपको 3 दिन दिया था दवाई, 3 दिन के बाद फिर 4th दिन आना, बोलते हैं डॉक्टर। और फिर पूछते हैं कैसा, कितने परसेंट ठीक है, 50, 60, 70, 100, कितनी परसेंट ठीक लग रहा है, बोलते ठीक लग रहा है। तो भगवान अंत में पूछते हैं अर्जुन को, कैसे लग रहा है, अभी ट्रीटमेंट हुई है, कैसे लग रहा है, उपदेश दिया है। तो अर्जुन कहते नष्टो मोहा श्रुतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनं तवा, बोले कृष्ण मोह नष्ट हो गया, मोह रूपी जो वायरस घुस गया था वो खत्म हो गया, नष्टो मोह श्रुतिर्लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त हो गया, रियल ज्ञान। करिष्ये वचनं तवा, जो आप आदेश दोगे वो बताओ, मैं खड़ा हूं धनुष लेके, बैठा नहीं हूं, खड़ा हो गया, बताओ क्या करोगे। तो ये भगवान के आदेश उपदेश रूपी औषधि ने क्या किया, उस मोह को नष्ट कर दिया, हार्ट डिजीज हृदय रोग को नष्ट कर दिया। ये दवाई ऐसी जोरदार है, गीता का ज्ञान इस प्रकार से वायरस को खत्म कर देता है। लेकिन ये जो गीता ज्ञान रूपी औषध है, इसका लेने का तरीका थोड़ा अलग है। नहीं, जब शरीर का रोग हो जाता है तो शरीर के रोग को दूर करने के लिए हम जो औषधि लेते हैं वो औषधि मुख से लेते हैं, दवाई गोली टैबलेट मुख में डालते फिर पानी पीते हैं। परंतु ये हृदय रोग को दूर करने की जो उपदेश रूपी दवाई औषधि है, गीता के ज्ञान रूपी जो औषधि है, ये मुख से नहीं ली जाती है, ये दो कानों से ली जाती है। इस औषधि को कानों से पिया जाता है। नहीं, अब कानों से जो जितनी अच्छी ज्यादा पूर्ण औषधि प्राशन करेगा पिएगा, उसका रोग तुरंत दुरुस्त हो जाएगा। और नहीं तो मां क्या कहते हैं उसको, सर्जरी, बायपास, बायपास से भी काम नहीं चलेगा, ये बहुत बड़े भयंकर वायरस है। क्योंकि इसके लिए डॉक्टर भगवान कृष्ण स्वयं है, साथ ही छोटे मोटे डॉक्टर का काम नहीं है ये। तो यहां भगवान इसलिए कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि तुम ये ऐसा करो, मेरे उपदेश का पालन करो। क्या करो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, इनडायरेक्टली भगवान ये कह रहे हैं। कैसे हो तुम, ये भयानक, ये तुच्छ बात कैसी तुम्हारे हृदय में आ गई, इतनी तुच्छ बात इसलिए आ गई क्योंकि तुम्हारा हृदय दुर्बल हो गया। पहले कहे पार्थ, अब अंत में इस श्लोक के अंतिम शब्द परंतप, बताइए, है ना। किसी को कुछ दो, भलाई बुराई, कोई बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको, छोटे बच्चों को हम जोर से कभी कभी गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं उनके ऊपर, फिर क्रोध होने के बाद फिर बोलते अरे नहीं बेटा तुम अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, उसको कुछ बोल दिया तो अंत में एक सेंटेंस बोलते नहीं वैसे आपको तो सब कुछ पता है, पहले तो बहुत गालियां दे दी, अब हम बोलते नहीं नहीं वैसे तो आप बड़े ज्ञानी हैं, आप तो सब जानते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने सब कुछ बोला, पार्थ कहा तुम तो, पार्थ का दूसरा अर्थ ये कि तुम ऐसे हो गए हो कायर, पार्थ मतलब तुम तो मेरे रिश्ते में होके भी ऐसे कायर हो गए हो। अरे भगवान के संबंधी है, रिलेटिव है, भगवान के रिश्तेदार है और वो कायर, मेरा नाम कितना खराब हो जाएगा, भगवान सोच रहे अरे मैं कायर का सारथी बना हूं क्या, मेरा रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार हो तुम, और मेरे रिश्तेदार ऐसे हो गए क्या। भगवान ये सब इनडायरेक्टली याद दिलाना चाहते हैं अर्जुन को, कहना चाहते तो यहाँ पे तो पार्थ कहा, अब कहते हैं परंत, पर इसलिए कहते हैं कि अभी इतना सब बोल दिया है, अब इसको याद भी तो दिलाओ कि इसके पास क्या शक्ति है। अभी तक तो कहा तुम्हारा हृदय दुर्बल हो गया, नपुंसकता आ गई, कायर तक कायर हो गए हो, कैसे तुम्हारी स्मृति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मोहित, तो कितना ब्ला ब्ला, बहुत सी बातें भगवान ने कही। अब वो कह रहे परंतप, लेकिन तुम तो परंतप हो। परंतप का अर्थ है शत्रुओं को तपाने वाला, तपाने वाला मतलब प्रताड़ित करने वाला, भयभीत करने वाला। शत्रु पक्ष केवल अर्जुन के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं, तो शत्रुओं को भयभीत कराने वाला परंतप, तुम्हारा ऐसा बड़ा नाम है। दूसरा अर्थ परंतप होता है कि परम तप, परम मतलब उत्कृष्ट, तप मतलब तपस्या, तुम तो उत्कृष्ट तपस्या करने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर ये अटैचमेंट कहां से आ गई, मोह कहां से आ गई, तुम तो तपस्वी हो, तुम्हारे अंदर तो कभी आसक्ति नहीं आ सकती। बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े साधुओं को, तपस्वियों को आसक्ति उनके मन में उत्पन्न हो सकती है, उनका फॉल डाउन हो सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं, है ना। हमने एक बार चर्चा की थी, एक बहुत बहुत बड़े साधु महाशय थे, पहले तो बहुत बड़े मिलियनरी थे एकदम, उनके पास बड़ा धन था, ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन अचानक उनको समझ में आया कि ये सब क्या है, सब उसी में मेरा जीवन व्यतीत मुझे नहीं करना है, कुछ आत्मज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की दिशा में जाना है, तो वो संसार छोड़ के जंगल में चले गए, पूरा अपना सब ऐश्वर्य धन सब दूसरों को देके निकल गए जंगल में। और जंगल में जाने के बाद कई महीनों तक उन्होंने तपस्या की, गंगा जी के तट पर बैठ के, एक ही जगह एक पत्थर पे बैठते थे, स्नान करने के लिए गंगा जी में जाते थे, स्नान करके बाहर आते थे, फिर तपस्या करते थे। एक दिन गंगा जी के स्नान के लिए फिर अंदर गए स्नान करने के लिए, स्नान करके जब वापिस आए तो उन्होंने देखा, क्या देखा, वो जिस पत्थर पे बैठ के रोज तपस्या करते थे उसी पत्थर पे कोई दूसरा एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा। तो ये महाशय बड़े क्रोधित हो गए, जोर से उस साधु को कहने लगे, हे साधु उठो मेरी जगह से, ये मेरा पत्थर है। अब जो रुपए का धन, इतनी इतना सारा ऐश्वर्य सब छोड़ के आ गए, जंगल में आ गए, हिमालय में आ गए, गंगा जी के तट पे आ गए, अब वहां पे आके पत्थर के साथ आसक्त हो गए, मेरा पत्थर है, क्यों बैठ गया इसके ऊपर। इसलिए आसक्ति किसी की जल्दी छूटती नहीं, परंतु तुम तो परम तपस्वी हो अर्जुन, तुम तो आसक्त भी नहीं हो। उर्वशी का उदाहरण है, अर्जुन जब स्वर्ग में गए उनका पूरे तीनों लोगों में जय जयकार हो रहा था, इतने परम योद्धा महायोद्धा, तो उस प्रकार से सारे देवी देवता उनके ऊपर संतुष्ट थे, तो इंद्र के रथ पे बैठ के वो स्वर्ग में गए अर्जुन देखने के लिए। हम जैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं देखने के लिए, हिमालय की दिशा में जाते हैं, कोई साउथ में जाता है, कोई नॉर्थ में, कैसे है देखते हैं, वैसे ट्रिप पिकनिक के लिए अर्जुन गए स्वर्ग में। हमारी पिकनिक है अभी 7 और 8 जुलाई को, 7 जुलाई और 8 जुलाई को हम भी पिकनिक के लिए जाएंगे, क्योंकि अर्जुन भी गए थे, ये सोच के हमने भी सोचा हम भी जाएंगे। अर्जुन तो स्वर्ग में गए थे, हम तो जाएंगे क्या गौशाला और कहाँ कहाँ जाएंगे, प्रभु जी बताएंगे, तलाश्री बोर्डी और गौशाला और कहाँ कहाँ, 2 दिन के लिए वहाँ पे काउंसलिंग मीटिंग, काउंसलिंग में जो आते हैं रेगुलर उनके लिए ये पिकनिक है, सैटरडे शनिवार दोपहर से लेके तो रविवार रात तक। अर्जुन से हम बहुत प्रोत्साहित हुए, हमने सोचा हम भी भक्त है तो सब भक्त आज प्रभु जी को नाम वगैरह दीजिए जो काउंसलिंग में रेगुलर आते हैं, बस उसी अनुसार बस की व्यवस्था की जाएगी जो भी है। तो इस प्रकार से अर्जुन स्वर्ग में पिकनिक के लिए गए, वहां गए तो सारे देवतागण उनको बड़ा प्रशंसा करने लगे और उर्वशी उनको देख के बड़ी प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई अर्जुन की ओर, और अर्जुन के पास आ गई, प्रपोज करने लग गई अर्जुन को प्रपोजल किया, प्रपोजल दिया अर्जुन को। अर्जुन ने प्रणाम किया, अर्जुन कहे कि ये तो मेरे वंश की माता है। अर्जुन उनको उर्वशी माताजी कहा, माताजी कहते से ही उर्वशी को बड़ा क्रोध आ गया माताजी कहते से उर्वशी को क्रोध आ गया और उसने श्राप दे दिया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अर्जुन कितना तपस्वी था, वही स्वर्ग की कन्या है, जब विश्वामित्र के पास गई तो उनकी क्या बेहाल हो गए, इतने बड़े ध्यानी तपस्वी ऋषि ब्रह्मर्षि उनकी कैसी दशा हो गई। छन छन सुना उन्होंने केवल दो बार घुंघरू का आवाज, उनकी 60,000 वर्ष की तपस्या केवल छन छन से भ्रष्ट हो गई, आंख खोल के देखा और सारा तप शून्य हो गया, नष्ट हो गए। लेकिन अर्जुन देखिए परम तपस्वी है, वो कह रहा है माते क्या आदेश है मेरे लिए, मैं आपको माता समान देखता हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन को परम तपस्वी कहने का अर्थ है भगवान का है कि तुम तो इतने बड़े त्यागी हो, अब ये मोह कहां से आ गया तुम्हारे, परम तप उनको परम तप कहा, उनको याद दिलाया परम तपस्वी हो, उत्कृष्ट तपस्वी हो। जब वनवास के समय अर्जुन और पांचों पांडव जब वनवास के लिए जंगल में गए, उस समय अर्जुन तपस्या करने के लिए हिमालय को लांग कर आगे चला गया, हिमालय के भी आगे, और बड़ी घोर तपस्या करने लगा पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए। पशुपति का अस्त्र मतलब शिव जी से वो अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भयंकर तपस्या करने लगा। वो अस्त्र से भगवान शिव क्या करते हैं पता है आपको, शिव जी क्या करते हैं पशुपतास्त्र से, जब प्रलय आता है ना, सारी सृष्टि का विध्वंस हो जाता है, प्रलय आता है, तो प्रलय के लिए प्रलय के समय भगवान शिव उस अस्त्र का उपयोग करते हैं और उस वस्त्र के कारण पूरा संसार तहस नहस हो जाता है। तो इस प्रकार से उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए अर्जुन तपस्या करने के लिए गए, इतनी घोर तपस्या उन्होंने की कि पहले महीने में जब तपस्या शुरू की तो पहले महीने में 3 दिन में एक बार तपस्या शुरू की, अभी पहला महीना है तपस्या का, तो 3 दिन में एक बार सूखे फल खाते, सूखे फल मतलब जो पेड़ से नीचे गिरा हुआ है, पेड़ का तोड़ के नहीं खाएंगे, जो नीचे गिरा हुआ है वो 3 दिन में एक बार, और वो भी बाद में कैसी तपस्या करते थे, अपने ये पैर के जो अंगुष्ठ अंगठा आता है ना पैर का, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ ऊपर कर, फिर दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार फल खाए, नीचे गिरे 6 दिन में एक बार, फिर तीसरे महीने में 15 दिन में एक बार बस सूखे फल, और चौथे महीने से सब कुछ खाना बंद कर दिया। इतने तपस्वी तो भगवान शिव सोच देवी देवताओं को कहने लगे कि ये बड़ा परम तपस्वी है, ये मेरे जैसा ही तपस्वी है। भगवान शिव जी का ये वाक्य है, शिव जी कहते हैं कि ये मेरे ही जैसा तपस्वी है, मतलब भगवान शिव भी तपस्या करते हैं किसकी। तो इस प्रकार से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनको पशुपतास्त्र प्रदान किया अर्जुन को, अर्जुन के पास पशुपतास्त्र। बाद में यमराज ने यमदंड दिया, वरुण देव ने वरुणास्त्र दिया, कुबेर ने अंतर्धान अस्त्र दिया, और इंद्र देव ने क्या दिया, इंद्र के पास क्या है, वज्र दिया। इस प्रकार से अर्जुन के तपस्या से प्रभावित होके इन सब देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया है ना। तो इसके बाद देवता विश्वदेव ब्रह्मा ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि नारद इन सब ने आके भगवान अर्जुन को आशीर्वाद दिए, किसी ने अस्त्र दिया, किसी ने शस्त्र दिया। तो जब उर्वशी ने श्राप दिया अर्जुन को तो अर्जुन बड़े स्थिर थे, पर जब इंद्रदेव जिन्होंने इनको वज्र दिया वो थोड़े से चिंतित हुए। क्यों चिंतित हुए होंगे, क्या कारण हो सकता है, बता सकते हैं कोई? हाँ, ये तो सब पता है, टीवी पे तो सब सीरियल देखते रहते हैं। इंद्र का और अर्जुन का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? इंद्र का मंत्र दिया, मंत्र उच्चारण किया कुंती महारानी ने, और इंद्र ने मंत्र उच्चारण की वजह से उनको पुत्र दे दिया। तो वास्तव में अर्जुन इंद्र का पुत्र है। तो इसलिए इंद्रदेव तो बड़े प्रसन्न थे कि मेरा पुत्र, ये जो है मैंने जिसको दिया है, ये जो पुत्र है ये बड़ा पराक्रमी है, बड़ा सात्विक है, धर्मात्मा है। तो बड़े आनंदित थे, लेकिन कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, उर्वशी ने तुमको श्राप दिया है। क्योंकि उर्वशी को इन्होंने माता कहा तो उन्होंने उनको तुरंत श्राप दे दिया कि अच्छा तुमको मैं माता दिखती हूँ। अब ये श्राप लो तुम नपुंसक हो जाओ। तो ये श्राप की वजह से फिर इंद्रदेव कहने लगे कि ये जो श्राप है वास्तविक में श्राप नहीं है, तुम्हारे लिए वरदान होगा। क्योंकि पांडवों को एक वर्ष अज्ञातवास में रहना था और उसके बाद उनका पूरी शिक्षा 14 वर्ष का जो था वो खत्म होने वाला था, 13 वर्ष का, 12 और 1 13। तो इस प्रकार से इंद्रदेव कहे कि केवल एक वर्ष तुमको ये श्राप रहेगा और वो भी तुमको वरदान के रूप में फलित होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को उसका उपयोग भी हुआ उस श्राप का, लेकिन अर्जुन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, श्राप तो श्राप, कोई मोह नहीं था उस समय, कोई अटैचमेंट नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी। तो इस प्रकार से तपस्या का बहुत महत्व है, बड़ा महत्व है।
देखिए, अर्जुन ने इतनी तपस्या की इसलिए भगवद्गीता हमको मिली सुनने को। भगवद्गीता आज हमारे पास है क्यों? क्योंकि अर्जुन ने इतनी तपस्या, और इस भगवद्गीता को प्रभुपाद महाराज जी ने तपस्या के ऊपर बहुत भारी बल दिया कि तपस्या करना।
यदि गीता का ज्ञान प्राप्त करना है तो तपस्या करना चाहिए। अंत में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ क्योंकि तुमने तपस्या किया। एक कारण ये भी है अनेक कारणों में से, तो तपस्या करना चाहिए। प्रभुपाद महाराज बार बार कहते तपस्या करना चाहिए। प्रभुपाद महाराज ने स्वयं इतनी तपस्या की कि इस भगवत गीता को हमारे लिए और आसान कर दिया। कितनी तपस्या, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है पूरे संसार के ऊपर प्रभुपाद महाराज। इतना डिटेल में उन्होंने भगवत गीता को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो प्रभुपाद महाराज भी तपस्या के ऊपर बहुत बल देते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं तपस्या की। अर्जुन ने स्वयं तपस्या की, प्रभुपाद ने स्वयं तपस्या की, दोनों को। अर्जुन तो भगवान की रूपा तो प्राप्त किए और क्या कहते हैं, नष्टो मोहा, मोह तो नष्ट हो ही गया। लेकिन प्रभुपाद महाराज को साक्षात इस यहीं पे कलयुग में इसी शरीर में भगवान कृष्ण ने 2-3 बार दर्शन दिया और कहा कि ये उपदेश सारे संसार को दो। तो प्रभुपाद महाराज भी कह रहे कि थोड़ी तपस्या करो तो ये उपदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। अब तपस्या कलयुग में कैसे करें और क्या करें? नहीं, अर्जुन के जैसा करेगा? चलिए, ऋषिकेश के आगे क्या है? क्या है ऋषिकेश के ऊपर, बद्रीनाथ केदारनाथ के ऊपर? उधर जाके हम भी एक अंगूठे के ऊपर खड़े रह के हाथ ऊपर करके चलेगा ऐसे? हाँ, नहीं चलेगा ना। इसलिए प्रभुपाद महाराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तपस्या करना है कलयुग में तो कौन सी तपस्या करेंगे, क्या करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। ये तपस्या यदि हम सही करेंगे ठीक ठीक से तो हम भी जूनियर परंतप हो जाएंगे। नहीं सीनियर तो नहीं हो सकते, अर्जुन तो हम नहीं हो सकते, जूनियर परंतप जरूर हो जाएंगे। नहीं तपस्या करना है, तपस्या कौन सी है कलयुग में? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। कलयुग में एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही बात है, क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। ये जप और कीर्तन करने से क्या होता है? जप और कीर्तन करने से मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होगा तभी भगवत गीता के उपदेश को हम समझ पाएंगे। नहीं तो मन कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं। वो इंग्लिश में वो एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, गणित का एक फॉर्मूला, वैसे हमारे भी फॉर्मूले हैं भगवत गीता समझने की। वो कहते हेड प्लस हार्ट, हेड प्लस हार्ट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। जो हृदय में चल रहा है वही यदि मन में चले तो हम हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन मन अशुद्ध है, हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, इसलिए हृदय तो चलो वास्तविकता हृदय शुद्ध है, लेकिन मन के संग में आ जाता है, हृदय मन के संग में आ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? अनहैप्पीनेस आ जाता है। लेकिन जैसा हार्ट वैसा यदि माइंड रहे, हार्ट प्लस माइंड इज इक्वल टू हैप्पीनेस, एच 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 ट्रिपल एच फॉर्मूला है ना। तो ट्रिपल एच फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि हृदय में भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में, मैं आत्मा हूं, ये हमारा हृदय, हार्ट मतलब मैं आत्मा हूं, और माइंड मतलब मैं भगवान का दास हूं। दोनों को ऐड कर दो तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, आनंद ही आनंद। इसलिए हार्ट प्लस हेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की। इसलिए नित्य कीर्तन करते रहना चाहिए, अपने हेड को ठंडा रखना चाहिए। हेड को ठंडा रखना चाहते हैं तो नित्य कीर्तन कीजिए, नहीं तो हेड गर्म हो जाता है। हेड गर्म होता है तो हार्ट के साथ कनेक्शन टूट जाता है, हार्ट के साथ कनेक्शन टूट गया तो हार्ट का हृदय का रोग हो सकता है, कोई भी एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना। हरे कृष्ण।